लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रताड़ना के शिकार बने ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों को संपूर्ण कलीसिया की प्रार्थनाओं एवं भौतिक सहायता द्वारा समर्थन और संबल प्राप्त हो। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। विश्व मंडल के प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाख लता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा, तूने उसके लिए भूमि तैयार की जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियां ऊंचे देवदारों पर, उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थीं और उसकी टहनियां फरात नदी तक। तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 80वें भजन के 8 से लेकर 14 तक के पद। इन पदों की व्याख्या से ही हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। जैसा कि हमने बताया था, इन पदों में हमारे समक्ष इजरायली जाति के निष्कासन की धर्म तत्व वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इनमें कही गई बातें वस्तुतः वे बातें हैं जो इतिहास के अंतराल में कई बार घटी और अनवरत घटती रहीं। उक्त पदों से स्पष्ट है कि ईश प्रजा प्रभु में अपने विश्वास की पुनरावृत्ति करती और उनसे उत्तर की आशा करती है, क्योंकि वह जानती थी कि प्रभु ईश्वर की दया दृष्टि से ही वह सुरक्षित रह सकती थी। प्रभु ईश्वर के मुक्तिदायक कार्य को वह प्रकाशित कर कहती है, तू मिस्र देश से एक दाख लता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा, तूने उसके लिए भूमि तैयार की जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। इस प्रकार मिस्र की गुलामी से मुक्ति और वहां से प्रतिज्ञात देश तक निष्कासन उन समस्त घटनाओं का आधार बना जो भविष्य में होने वाली थीं। इस तथ्य पर हम गौर कर चुके हैं कि नबी ईसाया ने ईश्वर को दाखबारी के मालिक और इसराइल को उनकी पसंदीदा दाखबारी रूप में वर्णित किया है। नबी ईसाया के अनुसार इसराइल वह अंगूरी थी जो प्रभु की दाख लता में विकसित हुई थी। इसी प्रकार नबी होशेया ने इसराइल को प्रभु की दाखबारी की अंगूरी कहकर पुकारा था। सच तो यह है कि ईश्वर ने चाहा था कि इसराइल यथार्थ सुख की अंगूरी संपूर्ण विश्व में वितरित करने का अस्त्र बने, किंतु वह अपने अविश्वास के कारण इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी। 80वें भजन के 13वें और 14वें पदों में ईश प्रजा एक प्रकार से विलाप करती हुई प्रभु ईश्वर से उत्तर की मांग करती है। कहती है, तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। दाख बारी का बाड़ा गिरा और मैदान के पशु उसमें घुस आए और चरने लगे, जंगली सुअरों ने उसे उजाड़ दिया, आदि आदि सभी अशुभ घटनाओं के लिए इजरायली जाति ईश्वर को दोषी मानती है। अपना दोष उसे दिखाई नहीं देता। ईश्वर ने इजरायली जाति को अपनी प्रजा रूप में चुना था और यह बात यिर्मयाह के ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 21वें पद से स्पष्ट हो जाती है, जिसमें प्रभु ईश्वर प्रश्न करते हैं, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाख लता की तरह रोपा, फिर तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाख लता में बदल गई। श्रोताओ, आज का मनुष्य भी कोई खास बदला नहीं है। आज भी वह अपनी असफलताओं और निराशाओं का दोष ईश्वर पर ही मढ़ता है। उसके संग जो कुछ भी अशुभ होता है वह उसे ईश्वर का ही कार्य दिखाता है, अपना दोष उसे दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहा करता है, मैंने ईश्वर की दुहाई दी, उनसे विनती की, किंतु उसका कोई फल नहीं मिला, उसके बदले में मुझे दुख ही दुख मिले। जबकि सच तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य वही पाता है जो वह रोपता है।
जैसी तेरी करनी जग में, जैसी तेरी करनी जग में, वैसी ही गत पावेगा, वैसी ही गत पावेगा। मिट्टी तेरी कायर पानी, मिट्टी तेरी कायर प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी, मिट्टी तेरी कायर प्राणी।
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 80वें भजन के अंतिम पदों में, अर्थात 15 से लेकर 8 तक के पदों में, ईश प्रजा प्रभु से आर्त याचना करती है कि वे वापस उसके पास आएं और उसके कष्टों से उसे उबारें। ये पद इस प्रकार हैं, विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर, वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है, तेरी दाख लता काटकर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है, अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी, तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे। तू हमें नव जीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। श्रोताओ, 80वें भजन के 1 से लेकर 7 तक के पद ईश प्रजा की पहली प्रार्थना थी, 8 से लेकर 14 तक के पद दूसरी प्रार्थना, और अब 15 से लेकर 20 तक के पदों में हम तीसरी प्रार्थना को पाते हैं। इस प्रार्थना में इजरायली जाति ईश्वर को एक प्रकार से चुनौती देती है और उनसे कहती है कि वे उस दाख बारी को आकर स्वयं देखें कि किस निष्ठुरता से उसकी दाख लताएं काट डाली गई हैं। वह प्रभु ईश्वर को याद दिलाती है कि वह उनका कृपा पात्र और उनका पहलौठा पुत्र है। इज़राइल ही वह प्रजा है जिसे प्रभु ने शक्ति प्रदान की थी, और अब जब उसकी दाख लताएं काट कर जलाई जा रही थी, प्रभु आए और उसका उद्धार करें। कहती है, अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। श्रोताओ, एक प्रकार से स्तोत्र ग्रंथ का 80वां भजन इज़राइल रूपी उस अंगूरी की कहानी है जो अपने मिशन में विफल हो गई थी। बाइबल आचार्यों का मानना है कि 80वें भजन में इज़राइल की उन 9 जातियों की प्रार्थना निहित है जो निष्कासन से कभी वापस नहीं लौटी थी। तथापि हमें नबी एज़ेकियल की आशा पर गौर करना चाहिए, जिन्होंने उन जातियों का विवरण प्रदान किया है जो निष्कासन से वापस लौटी थी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया था। इस स्थल पर यह ध्यान में रखना हितकर होगा कि प्रभु ईश्वर की संविदा सदा सर्वदा के लिए है। ईश आज्ञाओं का उल्लंघन करने वालों को कष्ट होता है, जैसा कि इज़राइल की कुछ एक जातियों को हुआ था। किंतु जो लोग ईश्वर के आदेश अनुकूल जीवन यापन करते हैं, वे सुख, समृद्धि और मुक्ति के भागीदार बनते हैं।
मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाए धन संपत अरुमाल खजाना, धन संपत अरुमाल खजाना, साथ नहीं कुछ जाएगा, साथ नहीं कुछ जाएगा, मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में चार दिवस के ये सब रिश्ते।